भुवनत्रयम् जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वभीष्ट प्रदा गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर जीव की जय, दामोदर व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, ऊर्जा व्रत कार्तिक व्रत नियम सेवा दामोदर व्रत की जय, चतुर्मास व्रत की जय, जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधारानी की जय, ब्रजदेवी गण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। শ্রীশ্রীমদ দামোদর অষ্টকম সত্যব্রত মুনি সনাতন গোস্বামী গুরুপাদ আদর ও সব বৈষ্ণববৃন্দকে চরণ কমল মে হামলোক প্রার্থনা করতে হ্যাঁ ব্রতা আমার পাশ মে সদা সর্বদা বিরাজমান রহে অর্থাৎ আমার চিত্তবৃত্তি দূষিত কলঙ্কিত ন হো যায় কহি জেসে पतिव्रता सतियाँ अनन्य होती है। ऐसे ही कहते हैं यदि व्रत धारण किया दो चार दिन के लिए, घंटों के लिए, महीनों के लिए, फिर व्रत को उखाड़ करके फेंक दी तो उनको पतिव्रता न करके कर स्वेच्छाचारी नहीं माना जाता है, जो स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है, आज किसी के पास काल किसी के पास। ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, दायित्वहीन हो जाता है क्योंकि उनको कोई नहीं पूछता है, कहीं क्या नहीं रहता है, कलंक उनके ऊपर कलंकिनी और उल्टे पुल्टे बातें कही जाती है, किंतु जीवन भी दुखमय होता है। इसे श्वेतव्रत मुनि कहते हैं वर्तमान काल में कि इदंते मुखम्बुजा मद्भक्त नीलई वृंतं कुंतली स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मुहुः सुम्बितं बिंब रक्ताधरं मे सदा में मनुष्य अविरास्तम की मन नहीं। मेरे मन में वो गोपाल बाल स्वरूप सदा सर्वदा विराजमान रहे। सबके हृदय में यदि ये गोपाल बाल स्वरूप यदि विराजमान रहेगा तो सरल स्निग्ध सौम्य शांत प्रशांत और बड़े नम्र विनयी रहेगा। जहाँ जहाँ अभिमान आता है, अपने अहंकार आता है, तहाँ दूर हटता जाता है, वहाँ तिनादोपी सुनिश्चित रहता नहीं है और नित्य स्मरण नहीं बना रहता है। बहुत कुछ हृदय में स्थान आप प्राप्त करने पर और जगह बना लेने पर तब चित्तवृत्ति दूषित और कलंकित होता है। इससे ये गोपाल बाल स्वरूप सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे। जैसे वो बाल गोपाल है भगवत्ता को छोड़ करके अपनी जसदा माता के लाड़े बन गए हैं और सबका प्यार प्रीति से यही उनका पूजा है और वो इसमें ही प्रसन्न रहते हैं। और यदि हमारा प्रीति अन्यत्र बढ़ गया तो हम बाल स्वरूप खत्म हो गया। बालक गोपाल की कैसे ममता है, माँ यदि ताड़न भर्षण करे, मारे पीटे कूटे, चाहे कुछ भी करे, माँ के बिना किसी को जानता नहीं, अनन्यता है हैं। और जहाँ जहाँ बुद्धिमान होता है तो माँ से दूर हट गया हाँ और इतना दूर हट गया, अब नज़दीक भी नहीं आ सकता। वो प्यार के लिए कोशिश करने पर भी कभी मिल नहीं सकता। हाँ, सोचता है किंतु हो नहीं सकता, झिझक लग आ जाता है। उस समय एक दूरी अपने को समझ दें, दूर समझ दें, किंतु भगवान स्वयं इसलिए आविर्भूत हुए हैं ब्रज में कि चित्तवृत्ति को कैसे अपने तरफ आकर्षण कर लें। यदि यह चित्तवृत्ति प्रभु की तरफ नहीं आया तो ये चित्तवृत्ति तो कहीं ना कहीं तो भटकेगा ही, कहीं तो कहीं तो जाएगा ही, और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा ग्रहण करके दूषित और कलंकित होकर के सदा सर्वदा दुखमय जीवन यापन करेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं सबके साथ में वो संबंध बरकरार रखना चाहता हूँ कि यह गोपाल बाल स्वरूप सदा मेरा बनी रहे। जैसे मार्कंडेय ऋषि बहुत तपस्या की, बहुत आराधना की, कहते मार्कंडेय ऋषि का इतना तपस्या थी कि देवता लोग आकर के हाथ जोड़ने लग गए, महाराज आप इतना तपस्या करने से ब्रह्मांड में आपके लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहेगा। अर्थात क्या स्थान नहीं बाकी रहेगा, अर्थात भगवान जैसे अंतर्जामी हो जाते हैं, सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, ऐसे ही आप समस्त प्राणियों के हृदय में आपका स्थान हो जाएगा। क्यों? आपकी शक्ति बहुत प्रभावशाली आकर्षणीय है। इस आकर्षण के द्वारा कोई जीव भी कहीं नहीं जा सकता, अर्थात सभी आपकी तरह ही तपस्या में मग्न हो जाएगा, तो ये सृष्टि कैसे रहेगी। क्योंकि देवता लोगों को सृष्टि के रहस्य में ये उनको चाहिए होता है कि माया के अंदर रहे तो हमें इज्जत करे, सम्मान दे, हमारी पूजा करे। किंतु मार्कंडेय ऋषि सबके हृदय को आकर्षित करके भगवान के चरणों में समर्पित करने वाला था। इस समय क्या हुआ, वो जब स्नान करने गए, तर्पण करने, और स्नान तर्पण का बातों को समझने की कोशिश करना है, गाय भैंस की तरह तालाब में उछल गया, कूद गया, स्नान करके चला आया, सुअर की तरह नाले में अपने बैठ गया, ये स्नान नहीं है। स्नान का तात्पर्य है हम पवित्र होकर के तर्पण करेंगे, अर्थात पितृपुरुष नहीं भगवान तक सबको मैं अभिषेक करूँगा। अर्थात हम गंगा जी गए, गंगा जल भगवान के लिए समर्पण करेंगे, गुरुवर्गों के लिए देंगे। तो वो मार्कंडेय ऋषि इतने हृदय पवित्र निर्मल था, कहते यदि अपवित्र पवित्र बा सर्वावस्थान गतो विवाह जस्मरित पुनरिकाख्य स्वभाह्य अभ्यंतर वसुचि। यदि आप स्नान करते हैं पवित्र नहीं होंगे, जब तक भगवान की स्मरण पुनरिकाख्य भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो आपका अंतर बाहर कभी शुद्धि नहीं होगा। इससे मार्कंडेय ऋषि तत्वज्ञ थे, अभिज्ञ थे, वो स्नान कर रहे हैं, हाथों में ले जल लेकर के तर्पण कर रहे, तिलांजलि कर रहे। तो ये तिलांजलि का तात्पर्य यह नहीं कि जल उठाकर फेंक दिया। आर्य समाज जी कहते हैं यदि हाथ में जल लेकर के देने से भगवान को मिल जाता है, पितृपुरुष को मिल जाता है, तो हम यहाँ हम पानी सींचते हैं, खेत में पहुँच जाए, हमारे खेत में फसल हो जाए। तो कहते हैं जैसे तब उनको कहते हैं, उत्तर देते हैं माधवाचार्य, क्या कहते हैं, ठीक है तुमने तो बोला यहाँ खेत यहाँ पानी छींचे तो हमारे खेत में पानी पहुँचना चाहिए, तो वहाँ तो पहुँचता नहीं, और ठीक है तुम किसी को बाप मान लिया ना, तुम्हारे बाप को तो हमने देखा नहीं ना, हमारे साथ मतलब है, मैं 10-20 गालियाँ दूँ तुम सहन कर लेगा, क्योंकि उनको लगता नहीं मैं तो यहाँ गाली दे रहा हूँ, तुम्हारे बाप को कैसे लगेगा। तो एक एक यदि कुछ बोलता है उसे काटने वाला तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्न नासार ऋषि जो से मतमन भिन्नम धर्म से दत्तम निहितम गुहायाम महाजनो जनगत सपंथा। तर्क करने से तर्क का कोई मीमांसा नहीं, एक मीमांसा करोगे फिर कोई और काट डालेगा और कोई प्रतिष्ठा करेगा, किंतु महाजन जो जो लोग कहते हैं उसको मानने की कोशिश करो, वो चिरस्थायी बंदोबस्त है, अर्थात उसका कोई मूल है, जड़ है। इससे सत्यव्रत मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे तो देवताओं ने बहुत अनुरोध किया, किसी के सुने नहीं। उस समय जब तर्पण करने गए, स्नान करने गए, उनके हाथों में छोटी सी एक मछली आ गई। उन्होंने मछली को फेंका नहीं, फेंक दिया तो वो बोलने लगे, मेरे को फेंक दिया, मैं कहाँ जाऊँ, ना कोई बड़ी मछली खा लेगा। तो कमंडोल में भर लिया, तो टू हमारे कमंडोल में रहे। क्यों? संत हृदय नवनित्य समान, संत तो किसी को घृणा नहीं करता, उपेक्षा नहीं करता, सबको सम्मान देते हैं, आदर देते हैं। मछली देकर घृणा नहीं की, रख लिया कमंडोल में। जब लेके आश्रम में आए तो देखा कमंडोल भर गया, बोले मेरे को कमंडोल में जगह नहीं हो रहा है। तो अब क्या हुआ, तो मेरे को किसी बड़ी जगह में रख दो। उन्होंने बड़ा बर्तन में रख दिया, वो भी भर गया, बोले मेरे जगह नहीं हो रहा है। तो तलब में रख दिया, तलब भर गया, बोले मेरे को जगह नहीं हो रहा है। अब कहाँ जाऊँ, तो नदी में रख दिया, बोले नदी भर गया आरपार। तो अब कहाँ ले जाऊँ, बोले समुद्र में ले गया। तो बोले देख, तेरे से मैं प्रसन्न हो गया। क्यों? तूने मेरे को घृणा नहीं की, उपेक्षा नहीं की। कारणा करनिंदा कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीने बेखले। किसी की निंदा चर्चा आलोचना करने की अपेक्षा अपने अंदर देखो, चित्तवृत्ति कलंकित दूषित मत करो। तो ये कहते हैं कि तूने मेरे को उपेक्षा नहीं की, अब मैं प्रसन्न हो गया। तेरे यही तपस्या है, तूने भगवान के लिए बहुत उपासना की, आराधना की, मैं घृणित हूँ तो मुझे तूने उपेक्षा नहीं की। तेरे अंदर दया भावना है और यही पूजा है। कहते हैं दया धर्म का मूल है और पाप मूल है अभिमान। दया धर्म न छड़िए जब तक है घट में प्राण। इसी किसी को घृणा उपेक्षा करने की अपेक्षा सोचना चाहिए, मेरे को भी कितने लोग घृणा करते होंगे, उपेक्षा करते होंगे। तो सत्यव्रतम मार्कंड ऋषि उस समय वो मछली ने बोला, देख 7 दिन के अंदर महाप्रलय आने वाला है, समस्त पृथ्वी रहेगा नहीं, 14 भुवन कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा कर, सब ऋषि महर्षियों को लेके और बीजों को लेके अर्थात आत्माओं को संग्रह कर रहे। जैसे रामचंद्र जा रहे थे तो बोले कौन कौन जाएगा साकेत में मेरे साथ, चलो। तो सब गए, रामचंद्र सरजू में प्रवेश किया। तो सब लोग सरजू में प्रवेश किया तो ये पंचतत्व तो यहाँ रह गया, किंतु आत्मा तो उनके साथ बीज के रूप में भगवान के धाम में पहुँच गया, जो नहीं गया वो रह गया। तो अब मार्कंड ऋषि को बोला, तुम ये नौका ले बना लो, नौका में चढ़ जाओ, वेद मंत्रों को लेके ऋषि महर्षि को लेके बैठो। देखो जब प्रलयबारी बढ़ने लग जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, मेरे पीठ के में कांटा है उसमें तुम नौका बांध देना। और किससे? अनंत देव वासुदेव वासुकी नाग से वो बांध लेगा, क्योंकि वो पानी में रहता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम उनको बोल देना वो भी आ जाएगा। तो उन्होंने बांध दिया और महाप्रलय हो रहा है। अब प्रलय कहाँ बह रहे हैं, कितना अंधकार है, कितना वर्षा है, कुछ है ही नहीं, सब नष्ट हो गया। उस समय उन्होंने क्या देखा, क्या उस समय क्या ध्यान साधना भूल गए, भजन भूल गए, दुख के मारे। हम लोग का तो थोड़ा दुख आ जाए ना, बिल बिलने लग जाते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं, हाय हैया रे मैया रे दैया रे भैया रे क्या क्या चिल्लाते रहते हैं। किंतु वो ऋषि ऐसे थे क्या, जिस सब ऋषियों को लेकर के सब समय कीर्तन और भगवत स्मरण, भगवत स्मरण अनुस्मरण, अर्थात कभी भी भगवत स्मरण से अलग नहीं हुआ। अब क्या हुआ, क्या देख रहे हैं, अरे उजाला हो गया, इतना दिन अंधकार में। और क्या देखा, एक बरगद के पत्ते में है एक बालगोपाल तैर रहा है, और अपने पैर के अंगूठे मुंह में डाल दिया। मुखारविंदे पदारविंदम और करारविंदे पदारविंदम, वो कैसे हैं, हाथ से पैरों को पकड़ करके पैर के अंगूठा अपने आप चूस रहा है और बरगद के पत्ते में तैर रहा है, हंस रहा है। उनको डर नहीं है ये महाप्रलय में, बहुत खुश हो गया। नौका चलते 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 तैर रहा है, नौका आ गया कहाँ, ओ बटपत्र साई भगवान के निकट। उनको देख करके ऋषि महर्षि प्रसन्न हो गए, स्तुति करने लग गए। करते 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 कहाँ पहुँच गए, ओ नीलाचल क्षेत्र में, खीरदशाई विष्णु महाप्रलय में भी उनका धाम डूबता नहीं। तो नीलाचल क्षेत्र में आए, देखा अक्षय वट है बहुत सुंदर, और बरगद के पत्ते कितने हैं। भगवान आते 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 बरगद के खोड्रे में आकर के सो गए, और कितने देवता नहीं, कितने ऋषि महर्षि स्तुति कर रहे हैं। मार्कंडेय जी ऋषि आकर के देखा, वाह सुंदर प्रभु का लीला रूप है। उन्होंने उनकी स्तुति स्तव प्रार्थना आराधना करके और उनके परिक्रमा आदि करके बोले, प्रभु इस श्री चरण कमल में मुझे सदा के लिए स्थान तो दे दो, नहीं तो ये ब्रह्मांड में महाप्रलय में मैं कहाँ कहाँ भटकता जाऊँ, कहाँ कहाँ भ्रमण करूँ। कभी आपकी माया देखने की इच्छा हुई थी, आपने अच्छा माया दिखा दिया, अब नहीं चाहिए मुझे देखना है, आपके चरण कमलों से मेरे को अलग नहीं हटना है। तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं, ये जो बाल गोपाल भगवान का रूप है, ये जो सौंदर्य है, ये जो सामर्थ्य है, आकर्षण है, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए महाप्रलय क्या को विषय रहे न रहे, किंतु प्रभु हमारे सदा विराजमान है। अब छठवां श्लोक में कहते हैं, नमदेव दामो दरणंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाद्वि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु गृहान से मामोज्ञ मेद दृश्य। कहते प्रभु शरणागत हैं, किसके आपके श्री चरण कमलों की, आप मुझे साक्षात रूप में दर्शन दो। मैं स्मरण करता हूँ, अंतर्जामी के रूप में ध्यान करता हूँ, किंतु मेरा इच्छा है साक्षात दर्शन। मतलब साक्षात क्या दर्शन, जैसे यशोदा माता आपकी सेवा करते हैं, ब्रजवासी ब्रजजन सेवा करते हैं, ऐसे मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरा अभिलाषा है। हाँ है, यदि भगवत ध्यान करते हैं, भगवत स्मरण करते हैं, यदि आप यदि संबंध बनाना चाहते हैं, तो आपको सेवा करना सीखना पड़ेगा। भगवान जी कृपा करते हैं ना, तो उनको सेवावृत्ति दे देते हैं। कोई घर में गिरिराज जी ले आए और वहाँ बैठ करके समोसा खाते हैं, तो लड्डू भी खाते हैं, बोलते हैं खाली लड्डू समोसा खिलेगा, रबड़ी नहीं खिलेगा। सनातन गोस्वामी को पूछ रहे हैं, खाली ये आटा मांग करके लाता है और डोल बना करके पत्तों में सेक करके देता है, क्या थोड़ा नमक नहीं देगा? बोले तो आपका नमक टमक हम नहीं दे सकते हैं। कहा आज नमक मांगोगे, काल बोले घी लिया, उस बोले सब्जी लिया, फिर बोले लड्डू लिया, हम आपकी इच्छा पूरा नहीं कर सकते। यशोदा माता आपकी इच्छा पूरा नहीं कर सके, हम क्या खिलाएंगे, हमारे बस की नहीं है, आप अपना व्यवस्था कर लो। और कर लूँ बोले ठीक है, तेरे आदेश के लिए मैं बैठा रहा ना, तेरे पास मैं आया ना, तूने नहीं कुछ करा तो मैं अपने कर व्यवस्था करता हूँ। तो आपने व्यवस्था बना ली, कितने सेवक, कितने गाय, कितने मंदिर, क्या क्या बना ली, तो अब तो तू मेरे पास रहे? बोले नहीं, तुम्हारे मैं भी लालची बन जाऊँगा, जब छप्पन भोग मिलेगा ना तब भजन हो जाएगा। हाँ, या तो भोग है या तो भजन है, कौन सा करोगे? भोग चाहिए भजन चाहिए, अर्थात हम आत्मेंद्रिय तर्पण करने के लिए यदि कुछ चेष्टा करते हैं उसका नाम है काम, और भगवत इंद्रिय प्रतिविधान के लिए चेष्टा करते हैं तो उसका नाम है प्रेम। तो हम यदि इंद्रिय तोषण इंद्रिय तर्पण करने लग जाते हैं, तो प्रभु के इंद्रिय तोषण के लिए हमारे पास समय नहीं है, अपने में ही मस्त मात वाला हो गया। अब सनातन गोस्वामी तो स्वीकार किया नहीं, अब ये क्या कर रहे हैं, मेरे को साक्षात में दर्शन दो, अर्थात मैं आपकी सेवा कर सकूं। सेवा करने से आपको भी छोड़ के जाएंगे नहीं, साक्षात विराजमान रहेंगे। तो सेवा करने का ये मतलब नहीं है कि प्रभु की सेवा करता हूँ, प्रभु भी मेरी इच्छा पूरा करे, मेरी सेवा करे, मैं उनको आठ डाली और चमचा बना लूँ, नहीं। भजधातु सेवायाम, उनकी प्रतिविधान के लिए मुझे सब कुछ करना है। तो यहाँ कहते हैं विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, या वो अपने स्वरूप में आकर के साक्षात रूप में प्रकट हो गए, किंतु यदि सेवावृत्ति नहीं है तो क्या करेंगे? बहुत लोग हरिनाम करते हैं, माला जपते रहते हैं, रस्सी खींचते रहते हैं, किंतु यदि भगवान को बुलाते हैं, हे प्रभु आओ, हम बुला रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम जप कर रहे हैं, तो प्रभु क्या सुनते नहीं हैं? सुनते हैं, हम बुला रहे हैं, तो वो आ भी गया और हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण करे जा रहे हैं। तो कब तक हमारे पास ठहरेंगे? बोले किससे बुला रहा है मुझे? तू खाली हरे कृष्ण कर रहा है, हैं, खाली जप कर रहा है, मेरे को बुला रहा है, और मैं आऊँ तो किससे आऊँ? और आके खड़े हैं तो हम हरे कृष्ण करने जा रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए तो एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे यहाँ भिक्षा करना, तो आके देखा गया सीताराम सीताराम जप कर रहे हैं। दोपहर हो गया तो महाप्रभु बोले कुछ भिक्षा रिक्षा दोगे नहीं? बोले हमारे सीता जी को रावण ले गया हर करके, अब राम रो रहे हैं सड़क में, तो कौन माता नहीं है तो कौन बनाएगा भोजन, तो मैं भिक्षा कैसे दूँ? महाप्रभु कह रहे सीता को कभी रावण छू नहीं सकता, और ये सीता माता सदा राम के साथ है और राम भी सीता माता के साथ है, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। महाप्रभु जी उनको बहुत समझाया, नहीं सुना। जब महाप्रभु साउथ से लौट के आ रहे हैं तो आध्यात्मिक रामायण ले आया साथ में, बोले देख क्या लिखा है, वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं, ये छाया सीता है, माया सीता है, रावण को बहकाने के लिए, ठगने के लिए रावण के लोक में जा करके उनको उद्धार करने के लिए उनको प्रकट किया। फिर महाप्रभु ने क्या कहा, जब रावण के लोक से सीता को लाने लग गए तब तो लक्ष्मण को बोला जाओ चित सजाओ, और सीता को बोलो एक साल वहाँ रहे तो अग्नि में प्रवेश करे, यदि ये परीक्षा है यदि अग्नि देवता स्पर्श नहीं की और जले नहीं तो शुद्ध है पवित्र है, मैं उसको ले लूँगा। तो उस समय बंदर विशेषकर हनुमान सुग्रीव अंगद नलनील जम्बवान लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए, किंतु लक्ष्मण ने देखा राम के आदेश पालन करना है, चीता सजाया बहुत सारे लकड़ी, क्यों वहाँ तो बहुत चीता जल रहा था, लाखों चीता जल रहे हैं, राम के पास मंददोरी भी आई, राम के पास मेघनाथ की स्त्री भी आई, सब राम से मिलने आए। मंददोरी ने बोला मैं सुहागिन कैसे रहूं, मेरा पति हीन पति बता मैं हूँ, मेरा पति चले गए तो मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं भी आग में प्रवेश करूँ? तो राम ने बोला देखो तुम्हारे पति की चीता कभी आग बुझेगी नहीं, ये चिरकाल जलता ही रहेगा, उसमें भी बड़ा तत्व रहस्य है। और इधर क्या बोल रहे हैं, सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा, क्यों? फिर क्या देखा लक्ष्मण ने, राम जी ने जब वनवास में आए तो जो असली सीता है उनको तो अग्निदेव तो प्रकाश रख दिया, और छाया सीता माया सीता राम के साथ है, जब अग्निदेवता आए गोदी में लेकर के राम को दे दी और छाया सीता माया सीता वो अंतर्ध्यान हो गया। तो आध्यात्मिक रामायण में ये सब विचारों को दिखाया, वो लेकर के वो रामनामी भक्त को दिखाया। पहले ही चेतना तो थी किंतु सब समय जप करते थे, सेवा नहीं करते थे। तो जो लोग केवल हरिनाम करते हैं सुख हरिनाम, किंतु वो लोग भगवान की सेवा तो करते नहीं। महाप्रभु ने कहा निरंतर करो नाम संकीर्तन आर करो वैष्णव सेवन। भक्तों के साथ यदि रहेंगे तो आप मानसिक सेवा करना सीखेंगे। भगवान को बुलाया तो आसन दो, उनको बैठाओ, उनके चरण धो, अभिषेक करो, स्नान आदि करके तिलक आदि करो, उनका भोजन बनाओ परसो, उनको पंखा करो, उनको अच्छी तरह से सुंदर रूप से सुस्थ रूप से सेवा करो, सब स्तुति करो, किंतु नहीं हम तो केवल सीताराम सीताराम करेंगे, नहीं तो राम नाम हरे कृष्ण करेंगे, बस खाली चिल्लाते रहेंगे हरे कृष्ण लाइक टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया, किंतु आत्मा चेतना वृत्ति नहीं है, परमात्मा के साथ संबंध नहीं है। तो वो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। कैसे बन गया ब्रह्म समान उल्टा उल्टा नाम जप करके? क्योंकि उनके गुरु कौन है, साक्षात नारद ऋषि हैं। तो नारद ऋषि ने क्या सिखाया, यदि तुमने রাম কি উপাসনা কি আরাধনা কি, তাই হনুমানজি সেবা করতে হয় 24 ঘন্টা, এসে সেবা করো না শিখো। তো পেলে মানুষের সেবা করো, মন শুদ্ধ হয়ে তো তন্মে তনকে দ্বারা বি কর সকোগে। আর যদি মন শুদ্ধ নেই আর তন বি অপবিত্র হে তো ভগবানকে সেবা নেই হোগা। হাম মায়াকে সেবা করেঙ্গে কিন্তু ভগবানকে সেবা নেই করেঙ্গে, সম্ভবই নেই, রুচি নেই হোগা, সামর্থ্য নেই। হ্যাঁ বলো আমার পাশে কিছু হই নেই, আরে মন তো হে, মনসে তো তুম গোবর্ধন যা সকতো, মনসে তুম কহিবি যা সকতো, মনসে দান পুণ্য। আমার মহারাজি কহতে আরে তেরা মন কেসা হে, রোজ দিন গিরাজি কে লিয়ে অন্নকূট মহোৎসব করার মধ্যে তুদিকো ক্যা লগতা হে, কোন সা খরচ হতা হে, একবার কমসে কম জাগরে প্রণাম করকে পূজা করকে উনকো কুছ সমর্পণ তো কর সকতা হে, এসমে কোন সা পয়সা লগ রা হে, কোন সা দৌলত লগ রা হে, দৌলত রাম তোমার ক্যা হানি হো রে, নুকসান হো রা হে। তো ইহা অব দাম সত্যব্রত মুনি কহতে হ্যাঁ মেয়ে বড়ে দুঃখ সমুদ্র মে মগ্ন হু, হ্যাঁ জলাব্দি মগ্ন হু, মেয়ে নিকল নি পা রা থা, ইতনা দুঃখে সমুদ্র মে, কিন্তু অব মেরে কো ক্যা বিচার আয়, দেখা ব্রজবাসী জন নিরন্তর আপকি সেবা করতে বড়ই প্রসন্ন হে, ইতনা প্রসন্ন হে আপকি সেবা করকে, তবে ইস প্রসঙ্গ মে ও কিস কিস কি বাত করতে হ্যাঁ কহতে হ্যাঁ সুদামাজি কত দিন ইন্তজার কি, ইতনে সে কিনকে লে গে দে দিয়া প্রভু কো, প্রভু নে স্বীকার করলি তো ক্যা বাকি রা উনকো। হ্যাঁ তো যদি সেবাবৃত্তি নেই আই তো তো কুছ মিলেগা নি। কহতে হ্যাঁ দ্রৌপদী পেলে জন্ম মে ক্যা থি, পেলে জন্ম মে বড়ে গরিব হ্যাঁ ও দুঃখী বৃদ্ধা, হ্যাঁ বড়ে কষ্ট মে দিন বিতাতি, তো ভগবানকে সবারে নিকলা রথ নিকলা, বড়ে সুন্দর কীর্তন গাজা বাজাকে সাথ বড়ে সবারে নিকলে, তো সব লোক ভগবানকে রথ কো দেখে আরতি কর রে, কুছ না কুছ নৌছার করতে কুছ না কুছ দেতে ভগবান কো, রথ মে ভগবান পতিত পবন হ্যাঁ সবকো দর্শন দেকর উদ্ধার করনে কে লিয়ে নিকলে হ্যাঁ, তো উনকো কুছ দেঙ্গে দে রে, ও বুড়িয়া সোচতি হে রথ আ রা হে, তো রাস্তা কাট করকে জঙ্গল মে খাড়ি হয়ে গই, কিন্তু সোচতি মে ক্যা দু, তো উসনে দেখা আমার পাশে তো ওর কুছে কপড়ে ভি নেই হ্যাঁ চিত্রে পেনে হ্যাঁ, তো উসে চিত্রা তুলা ফাড়কে টুকড়া লেকে ভগবানকে আরতি উতারা, বলাই আলি ভগবান বলতে আচ্ছা তের পাশ হে নেই এক টুকড়া চিত্রা মুঝে দিয়া, আচ্ছা আব তের কবি কমি নেই হোনে দুঙ্গা, বস্ত্র কি কমি নেই তের কিছু কমি নেই হোনে দুঙ্গা, বাস ইসকে কারণ কতে পরীক্ষায় ঘড়ি আই, হ্যাঁ দুঃশাসন দুর্যোধন উসকো বস্ত্রহরণ করার কোশিস কি, হ্যাঁ কিন্তু কর সকে গা, আর এক তরফ তো খুদ বস্ত্র বন করকে দ্রৌপদী অঙ্গমলি পট গে, আর ইধার ব্রজ মে ক্যা কিয়া বস্ত্র পেনে হুয়ে হ্যাঁ আর রখ দিয়ে হ্যাঁ উসকো হরণ করকে লে লিয়া, দেখো এক তরফ তো বস্ত্র দে রে হ্যাঁ আর এক তরফ বস্ত্র হরণ কর লে, কিসি কি আসক্তি হে তন মে মন মে, তো আসক্তিও কো সদা কে লিয়ে হঠা করে উনকো মুক্ত কর রে, আত্মা চেতনাত্মা হ্যাঁ ও তো নঙ্গে ধড়ঙ্গে হ্যাঁ উসকো তো বস্ত্র পেহনে নেই, শরীর ঢকনে সে ক্যা হোগা, শরীর কো ঢক ভি লিয়া গিয়া মন কো ঢক সকতে হ্যাঁ, মন কহাঁ কহাঁ পৌঁছ জাতা হ্যাঁ, আর যদি আত্মা কো যদি তুমনে ঢকা শ্যামপট্ট শাড়ি, হ্যাঁ কাল মে সোচ রাতায় বর্ণন করু কি বহুলাষ্টমী কাল গয়া না, তো শ্রীমতী রাধারানীকে উপাসনা কে লিয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং আদেশ দিয়া কার্তিকে মহিনা মে দামোদর মাস মে, যাও তুমলোক সব মিল করকে রাধাকুণ্ড মে যাও, মেরে উপাসনা করার কিছু মিলেগা না, মেয়ে দে নেই সকতা কুছ, সব লোক রাধাকুণ্ড মে যাও, ও যা করকে রাধারানীকে উপাসনা করো, রাধা মন্ত্র রাধা গায়ত্রী সে উনকে উপাসনা করো, মেয়ে তুমলোক আদেশ দেতা হুম, আর যদি রাধারানী প্রসন্ন হোগে হ্যাঁ সব প্রসন্ন হয়ে যায়, তোমারা কই বাকি নেই রেগা, আর তুমি যোগ চে সব মিল যায়গা, তো এসে লোক কেগা দে বাহ আজ তো আচ্ছা দিন হে, আজ জানে সে তো উনকে পূজা পাঠ করেন সে সব কুছ মিল যায়গা, তো উনোনে চালাকি চতুরাই সে হ্যাঁ আপনার বেটা নেই তো বেটা মাংলি, কিসে ধন দৌলত নেই তো মাংলি, কিসে নেই শরীর নেই তো রোগ হয় তো শরীর মাংলি, কিন্তু কৃষ্ণ যে কা উপাসনা কে লিয়ে उपासना क्या उपासना कथा साधन सिद्ध ब्रज में आए, किंतु जब तक नित्य शुद्ध के संग नहीं है, कृपा नहीं है, तो उनका साधन भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि भगवान कभी उनकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। नित्य सिद्धों के संग से कृपा से सीखने के बाद में, उनके कृपा के बाद में शक्ति संचार होने से बाद फिर कृष्ण सेवा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण ने साधन सिद्धों को आदेश दिया, जो लोग दामोदर व्रत कर रहे थे कि बार मेरा व्रत नहीं, ऊर्जा व्रत उज्जैस ऋषि मत राधारानी को ऊर्जा धरो, राधारानी का उपासना करो, तब कहीं जाकर के ये साधन सिद्ध जाकर नित्य सिद्धों के सान्निध्य में रह करके राधा का रानी की उपासना शुरू कर दी। उसमें कृष्ण भी सम्मिलित थे, कृष्ण ने सिखाया, सब कुछ बतलाया कैसे उपासना होता है। रात को 12 बजे हैं कुंड में स्नान करके हैं सब बैठ गए राधा मंत्र गायत्री जप करने और पूजा करने, उपहार देने। आजकल तो पेठा चढ़ाते हैं, कोई चंदन और फूल नहीं चढ़ाते, कोई माला वो भी जो बेकार की गंधहीन उल्टे पुल्टे फूल हैं, और वो भी कैसे श्रद्धा है, तमन्ना है, मेरे पूरा कर दो, मेरे यो चाहिए हैं, किंतु भावना नहीं है, प्रीति नहीं, किंतु कृष्ण ने सिखाया। इससे कोई कृष्ण कुंड की तरफ न जा करके राधा कुंड की तरफ आया और राधारानी की उपासनाएँ की। इसके परिणाम क्या हुआ, नित्य सिद्ध की कृपा हो गया, श्रीमती राधारानी की कृपा हो गया, तो स्वीकार कर लिया ज्योतिषरियों ने और कृष्ण सेवा की शिक्षा दे दी और कृपा कर दी, तभी कृष्ण सेवा कर पाए और कर सके। तो कहते हैं कि जब तक प्रभु आपके कृपा दृष्टि नहीं है, कृपा दृष्टि विष्टाति दिनंग बतानु, जब तक कृपा दृष्टि की वर्षा नहीं हो रहे हमारे ऊपर और नित्य निरंतर, तब तक मैं अज्ञ माम अज्ञ है मैं मेधक्षी अज्ञ मैं कैसा हूँ, अज्ञ हूँ। और साथ साथ में क्या बोल रहे हैं, यदि ये नेत्रों के सामने आँखों के द्वारा मैं आपको दर्शन करने योग्य नहीं हूँ, आप यदि कृपा करेंगे, अमृत की वर्षा करेंगे तो अनुग्रहण, यदि आप यदि अनुग्रह करेंगे तो अखी दृश्य मेरे नेत्र दर्शन के योग्य होंगे और आपके कृपा से सेवा करना हम सीखेंगे और सेवा के द्वारा ममता होगा, नित्यकाल मैं आपके पास ही रह सकूँगा, अर्थात आप मुझे स्वीकार कर लेंगे। जब तक सेवा नहीं है तो ममता नहीं है, संबंध नहीं है। इसलिए अब श्वेतवत मुनि कहते दिव्य स्वरूप को देख करके प्रणाम करने से नहीं होगा, केवल हे दामोदर आप तो अनंत स्वरूप है, कितने स्वरूप का मैं प्रणाम करूँगा, कहाँ कहाँ जाऊँगा, क्योंकि भगवान एक स्वरूप तो है नहीं। इससे पता नमो देवो दामोदर अनंत विष्णु, अनंत स्वरूप है। अब एक स्वरूप का मानो कृष्ण स्वरूप का प्रणाम किया, राम स्वरूप का अवज्ञा हो गया है। वो कहते हैं हनुमान जी श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व श्रीराम कमलोचन। मैं जानता हूँ श्रीनाथ जानकीनाथ अलग अलग नहीं है, एक ही है, किंतु मेरा प्राण सर्वस्व है वो कमलोचन राम। अब मानो राम को प्रणाम कर दी और श्रीनाथ को प्रणाम नहीं की तो बड़ा मुश्किल है, और नारायण को उपवास प्रणाम नहीं की, सब एक ही है, अलग नहीं है, किंतु स्वरूप और उनके वैभव का वैशिष्ट्य है। अब एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, ये बात कहने से तो होगा नहीं। इससे वो क्या कहते थे, दिव्य स्वरूप दिव्य रूप अनंत स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। किससे प्रणाम कर रहे हैं कि मैं प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हो जाओ। दुख जलाद भी मग्नम, मैं सांसारिक दुख के समुद्र में डूबे हुए हूँ, अति दीन हूँ, आटत हूँ, मैं जीते जी भी मरे हुए हूँ, अज्ञ हूँ, मेरे बुद्धि शुद्धि नहीं है, अनजान हूँ, और जब तक आप कृपा दृष्टि नहीं वर्षा नहीं होता है तो मेरा होश नहीं आता है। हजार कोशिश कर लो, उछल कूद करके पहाड़ भी लंघ जाओ, जब तक कृपा नहीं हो इस भगवान की। ऐसे दो चीज़, एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध। साधन करके हम आगे चल जाएंगे ये कभी संभव नहीं, ऐसे उनकी कृपा चाहिए। और कृपा क्यों होगा यदि हमारा साधन चेष्टा नहीं है? किंतु कैसे महाजनों ने साधन किया उसको देखो, तब इससे यहाँ वर्णन दे रहे हैं। मैं अपने आँखों से आपको दर्शन करना चाहता हूँ। दिव्य स्वरूप वाले भक्तवत्सल दामोदर, आप स्वतंत्र होने पर भी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। मैं इस संसार में संसार के समुद्र डूबता जा रहा हूँ, दीन इन हूँ, अज्ञ हूँ, बुद्धि शुद्धि नहीं, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ज्ञान नहीं, किंतु अब मैं देखा सब ब्रजवासी जन कितना प्रसन्न है, आप उनके सामने कितना प्रसन्न है, नित्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कांडा थप रहे हैं। आप पहुँच गए ब्रजदेव, यहाँ कांडा थप रही है गोबर का, तो आप पहुँच गए, तो देखा कृष्ण को, बोले लाला तू आ गया, तो दे लड्डू दे। अच्छा लड्डू खाएगा, अच्छा एक बार नाच तो ले, तो नाचने लग गए, तो दो लड्डू दो, तो गोबर के लड्डू बनाया दे दिया। और कहाँ दिया पता है, यहाँ पर ललाट में। तो बोले ये क्यों दे रही है, ये कोई लड्डू है? अरे अभी तो दे रही हूँ, यहाँ एक एक करके गिन लियो, जितने बार नाचेगा इतना लड्डू तेरे को घर जाके दूंगी ना। तो अच्छा, नहीं तो भूल जाएगा ना, गिनती तो नहीं रहेगा ना। तो उनको यहाँ से यहाँ तक अलका बना दी, यहाँ से यहाँ तक अलका बना दी हैं गोबर से। कितना खुश है, बोले प्रभु आप यदि एक गोबर के टुकड़े से भी इतना खुश होते हैं, मट्ठा छाछ जो कोई दुनिया में पूछता नहीं है, उसे एक एक, एक, एक दोना छाछ में आप इतना खुश हो जाते हैं, तो और हम तो कितना कोशिश करके भी न हम खुश रहते हैं ना आपको खुश कर सकते। इसलिए ब्रजजनों के पास इसे बतलाया, ब्रजजन मनुष्य को कारी राधे श्याम श्यामा श्याम, वो ब्रजजनों के साथ कितना प्रसन्न है, क्यों उनका आत्मचेतना वृत्ति कैसे हैं उनके प्रसन्नता के लिए। कहते हैं वही भगवान स्वयं चारण मनुष्य से लड़ रहे हैं, वीर आसाधन कर रहे हैं, क्या खुश है, चारण को उठाकर ऐसे फेंक दिया, मुष्टी को फेंक दिया, वो घूमता 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 नीचे गिरा, फिर उठाया है, जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, गेंद खेल रहे हैं, हैं और दुनिया देख रहा है, कौन से डर के मारे कांपना शुरू कर दिया, ये नेक्स्ट से तू है कर क्या रहा है, पहलवानों को ऐसे लेकर के खेल रहा है गेंद की तरह, हैं आदेश दे दिया, ए सल तो सल जाओ तुम लोग, ए सेनाएं तुम लोग जाओ, सबको लेकर के बस जैसे हरे पत्ती लेकर के यूँ ही फेंकते, फूलों को पंखुड़ी फेंकते हैं, ऐसे कहाँ कहाँ फेंक दिया है, सबरे बिखर गए, सबरे उद्धार होकर चला गया, अब रह गया कौन सा, भले तुम कब तक पेड़ में रहोगे, पतझड़ होएगा कि नहीं, बड़ा अभिमान है सुंदर है मैं पेड़ का पत्ता हूँ, किंतु देख तेरा पतझड़ का समय आ गया, अब चिंता मत करे, मैं पेड़ हिला दूंगा पत्ते अपने झड़ जाएंगे, तेरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। उछल कूद गए वो ऊपर पहुंच गए, पहुंचते खड़े हुए और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, नंद को बांधो, वसुदेव को मार डालो, इन लोगों को भगा दो, कौन किसकी सुने, पागल की तरह जैसे पागल हो जाता है ना, चौराहे में खड़े होकर चिल्लाता रहता है, और चिल्लाने लग गए। और कृष्ण उठे घबरा गया, तलवार निकाल ली, बोले अरे मामा तलवार क्यों निकाल रहे हो, तुम तो बोले खेलेंगे तो कूदेंगे तो इनाम दोगे, अब तो घबरा गया, घबरा गया, सोचा ये तो मूर्ति मार डालेगा, उछल करके नीचे गिर गया, गिर गया तो कृष्ण ने भी उछल कर आ गया, अरे कहाँ जा रहे हो, देते जाओ कुछ तो इनाम दोगे, तुमने इनाम की बात कही, किंतु तब तक तो पतझड़ हो गया, तब तक झड़ गया पत्ता, अब क्या रहा, और छाती में बैठ गए, थोड़े हिलाने लग गए, वो देखा कि है ही नहीं, बोले कहाँ से आ गए मामा, अब घसीटने लग गए, देखा है ही नहीं कहाँ चला गया। तो कहते हैं संसार के लोग इतना दुखी, इतना दुखी है? क्यों, अब सत्यव्रत मुनि ब्रजवासियों को देखा है? कैसे ब्रजजन सुख प्रसन्न है, क्यों? कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न किया है, इसलिए वो भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा सब पुंसांग पर धर्म जत भक्ति रदुख जी अहेतुकी अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न रहेगा अहेतुकी अप्रतिहता यदि ऐसे भक्ति हो तो। सनातन गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कृपा पूर्वक कहते हैं सत्यव्रत मुनि ऐसे स्तुति की भगवान खुश हो गए। नाम संकीर्तन करो ये साधन, किंतु नाम संकीर्तन करते समय में यदि ब्रज की स्मरण नहीं किया, ब्रजवासियों की स्मरण नहीं किया, यदि ब्रजलीला स्मरण नहीं हुआ तो ब्रजवासियों को कृपा नहीं मिलेगा, और कृपा नहीं मिलेगा तो भगवत नाम स्मरण में रुचि भी नहीं होगा, निरंतर नहीं होगा। यशोदा माता निरंतर कृष्ण स्मरण करती है और कृष्ण सेवा के लिए तत्पर है, भूलती नहीं है, कभी सोती है तभी कृष्ण की सेवा की याद करती है, जगती है तभी 24 घंटा, तो उनको माला लेके बैठ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, कि निरंतर चल रहा है, बंद कहीं कर सकते हैं, अरे वही भूल जाए। वो गोपियों को कहते हैं, गोपियाँ उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव ज्ञान दे रहे हैं, तुम मन के द्वारा भगवान का स्मरण करो, तो कहते देख उद्धव मनो भयो 10-20 एक मन सो गयो संग सैम संग को आराधा तेरा ईश, हमारा एक ही तो मन है, 10-20 नहीं है, एक था तो एक चला गया सैम के साथ, अब कहाँ से लाऊं मन और कहाँ करूँ ध्यान, कैसे संभव है? तो कहते हैं कि सत्यव्रत मुनि ओहो सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं भय के द्वारा नहीं, गौरव आदि के द्वारा नहीं, प्रेम विकलता के साथ, प्रेम के साथ वो ब्रजवासियों को स्मरण करो, ब्रजदेवी को स्मरण करो, ये कहने की जरूरत नहीं है प्रभु हे ईश्वर आप प्रसन्न हो जाओ, मैं संसार के मैं बड़े दुखी हूँ और मैं परंपरा के साथ में सीख लिया संसार की रीति नीति और उसके द्वारा मैं सबसे कयाबिता हो गया, जीते जी मरा हुआ हूँ, जीवन मृत हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, ज्ञान भी नहीं है, मुझे कृपा करो। कैसे कृपा? कृपा दृष्टि विष्टाती, जैसे भगवान प्रसन्न है तो ऐसी कृपा दृष्टि बरसाते हैं, भक्तों को भेज देते हैं, भक्तों को संग देते हैं और सेवावृत्ति देते हैं, उसके द्वारा प्रभु स्वयं विराजमान हो जाते हैं, दर्शन देते हैं और सदा सर्वदा अपने पास बुला रहते हैं, जैसे भगवत पार्षद की तरह उनको भी अपने परिकरों में अपना लेते हैं। तो ये जो साधन है दिव्य स्वरूप दामोदर स्वरूप है, किंतु अनंत स्वरूप में आप विराजमान हैं, किंतु मुझे तो यही नमोदेव दामोदर ये दामोदर स्वरूप ही चाहिए, जो कि भक्तों ने आपको बांध लिया, यशोदा माता ने कोशिश की किंतु वो बंधन नित्य नहीं रहा, किंतु और भक्तों ने हृदय में तो कारागृह भसदा हृदय मदीये मद्भक्ति पास दृढ़ निश्चल सन तांग कृष्ण है प्रलय कोटि सदांतरोपि सर्वस्व मोचयामि हृदय न मोचयामि। यदि आप प्रलय कोटि सदांतर बहुत भक्तों के हृदय से आप निकल करके जा नहीं सकते, उन्होंने ऐसे प्रेम से बांध लिया आप वहाँ से कभी अलग नहीं हो सकते, इससे हृदय रूपी कारागार में आप सदा सर्वदा विराजमान हैं, बंधे हुए हैं। तो इससे निकुंज गोबर आदि में वृंदावन के आप प्रवेश करने वाले क्यों? भक्तजन वहीं हैं आपके लिए, वहाँ ही इंतजार कर रहे हैं, अब वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, किंतु आप सर्वव्यापी है हे दामोदर, आपके वात्सल्य रस के द्वारा आपकी उपासना करते हैं तो आप सदा सर्वदा उनके पास है। यहाँ तक सनातन गोस्वामी टीका करते हैं, अब कल हम लोग अगला गुरु जी की टीका दिग्दर्शनी वृत्ति सुनेंगे। गौर प्रमानंदे।